हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ भगवान की कुछ चर्चा करने के लिए। तो ये विशेष महीना भी है। कौन सा महीना है? कार्तिक। जैसे दिवाली में किसी भी मार्केट में जाओ तो बम्पर सेल होता है, उसी प्रकार से कार्तिक भी भगवत भक्ति का सेल है, और जो बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति है वो इसका लाभ उठाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कार्तिक के समान कोई ऐसा मास नहीं है, एकादशी के समान कोई ऐसा प्रिय दिन भगवान कृष्ण को नहीं है, और तुलसी के समान कोई और पत्र भगवान को प्रिय नहीं है। तो ऐसे कार्तिक महीने में भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा करना, ये अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। तो हम आज भगवद गीता से चर्चा करेंगे कि भगवान भगवद गीता से हमें कुछ विशेष शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, और उस विशेष शिक्षा को समझने के लिए हमें क्या देना होगा? अपना थोड़ा सा समय देना होगा। आप सबने जैसे समय दिया है, और ऐसे समय का वास्तविक उपयोग तब है जब हम अपने कानों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। जैसे भगवान की जो सेवा है वो सर्वप्रथम शुरू होती है जिह्वा से। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधः। कि भगवान को जानना हमारे भौतिक इंद्रियों से असंभव है, लेकिन एक चीज से भगवान को जाना जा सकता है, और वो क्या है? सेवा के माध्यम से। इवन हम किसी को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो क्या करना शुरू करते हैं? हम उसकी सेवा करना शुरू करते हैं, क्योंकि सेवा के द्वारा कोई भी व्यक्ति वश में हो जाता है, या सेवा के द्वारा जिसकी आप सेवा करोगे उससे आप प्रेम करने लगोगे। ये स्वाभाविक है। इस संसार में माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो समय के साथ साथ बच्चों से इतना अधिक प्रेम लगाव हो जाता है कि उनसे अलग होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, अपना सर्वस्व अपना हृदय भगवान को देना चाहते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी होगी। और वो सेवा की शुरुआत किससे होती है? जिह्वा से। किससे? जिह्वा से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, कि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये इंद्रियों के द्वारा जानना असंभव है। न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, क्योंकि हमारे इंद्रिया क्या है? अशुद्ध इंद्रिया है, शुद्ध नहीं है। तो लेकिन हम यदि सेवा करना शुरू करते हैं तो भगवान के नाम को हम समझना शुरू करते हैं, और भगवान के नाम के अंदर बाकी चीजें समाहित है। भगवान के नाम में क्या है? उनका रूप भी छुपा हुआ है, उनकी क्वालिटीज भी है, और उनकी लीलाएं भी है। तो इसलिए यदि व्यक्ति भगवान के नाम को पकड़ लेता है अपने जीवन में, तो स्वाभाविक रूप से भगवान के जो गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का रूप है, उसको 24 घंटे स्मरण हो जाता है। तो इसी कारण से हम अपनी जिह्वा से भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं। जिह्वा से हम दो कार्य करते हैं, एक तो खाते हैं और दूसरा बहुत अधिक बोलते हैं। तो खाना है तो क्या खाना है? कृष्ण प्रसाद, केवल कृष्ण प्रसाद। वास्तव में ये कंठ इसलिए है, हमें व्रत लेना चाहिए कि इस कंठ से अंदर भगवान को अर्पित न किया हुआ कोई भी भोजन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं? मुच्यन्ते सर्व केलबिषय, जो मुझे अर्पित करके खाता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन मुझे अर्पित न करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी जीवा की लालसा के लिए, जो इस भौतिक संसार के स्वाद को चखता है, हे अर्जुन, वो व्यक्ति पाप को ही क्या करता है, भक्षण करता है। तो कैसे सुखी होंगे? तो इसी कारण से जिह्वा ये वास्तव में सारे इंद्रियों में सबसे अधिक पावरफुल इंद्रिया है, जिह्वा। जिस व्यक्ति ने जिह्वा को कंट्रोल किया है, उस व्यक्ति ने बाकी चीजों को स्वाभाविक रूप से कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जिह्वा से सेवा शुरू करो, और जिह्वा से सेवा का शुरुआत होती है भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को स्वीकार करना, और दूसरा है बोलना। तो हम बोलते तो बहुत सारी सांसारिक चीजें हैं, तो इस जिह्वा से हमें बोलना है तो भगवान के बारे में बोले, भगवान के नामों का उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होने लगता है। और भगवान की ये जो कथा है इतनी आकर्षक है कि स्वयं कृष्ण भी अपने बारे में सुनने के लिए क्या होते हैं, लालायित हो उठते हैं। अब आप में से कोई गया श्रीरंगम, श्रीरंगम साउथ में, वहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है दक्षिण भारत में। तो श्रीरंगम में भगवान विष्णु है द्विभुज रूप में अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, रंगनाथ उन्हें कहते हैं। ऐसे जो भगवान रंगनाथ है, उन्होंने देखा कि ऐसे ही कार्तिक आदि के महीने में उनका एक जो भक्त है, वो एक स्थान में मंदिर का प्रांगण इतना विशाल है, बहुत ही बड़ा, कई एकड़ में है वो टेम्पल, मतलब टेम्पल के अंदर सिटी है। तो ऐसे टेम्पल के एक ओर में एक जो उनका महान भक्त भगवान के बारे में कथाएं वर्णन कर रहा था, तो भगवान को लगा अरे मैं तो अंदर रहता हूँ, जैसे यहाँ भगवान को हम बांध के रखते ना, यहाँ शीशे में लॉक करके रखते हैं, आपको लॉक करके रखा तो कैसे लगेगा आपको? हाँ, तो भगवान एक व्यक्ति है, भगवान को हवा लेने के लिए भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। घर में हम बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल को मिस्त्री खिलाएंगे और उनके हाथ में जो ब्रास का बना हुआ लड्डू वैसे ही है, दिवाली आएगी तो अपने लिए लड्डू बनाएंगे, लेकिन गोपाल के लिए लड्डू नहीं, सेवा की भावना ही नहीं है। तो ऐसे ही उनको लगा कि मैं सदैव अंदर मंदिर के अंदर होता हूँ, अल्टर में होता हूँ, वहां मेरी पूजा उपासना आदि होती रहती है, मुझे तो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। सबको लगता है ना ऑफिस से बाहर निकलना चाहिए, कब तक करते रहेंगे हम? हाँ, गृहिणी को लगता है कब तक घर में चपातियां बेलती रहूं, बाहर भी जाना चाहिए थोड़ा छुट्टियां मनाने। तो वैसे भगवान को लगा कि मेरा एक भक्त अमेजिंग कृष्ण कथा का वर्णन कर रहा है, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए और मुझे भी अपने बारे में क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इस संसार में व्यक्ति को सबसे अच्छा कब लगता है, जब कोई उसका गुणगान करता है और वो जाकर कान से सुनता है, अरे मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता आपको? आपकी प्रशंसा हो रही हो, आपका गुणगान हो रहा हो, तो आपको भी वहां बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसी प्रकार से भगवान भी, ये कृष्ण कथा इतनी पावरफुल है कि भगवान कृष्ण भी अपने बारे में सुनने के लिए क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं। इसलिए तो जब महाराज परीक्षित के ऊपर ये आपदा आ गई, सुना है ना आपने परीक्षित महाराज के बारे में, राजा थे पूरे भारत वर्ष के, एक छोटे से बालक ने श्रृंगेरी श्राप क्या दिया कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो महाराज परीक्षित ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, बैंक बैलेंस है, इतने एटीएम के कार्ड्स है, कुछ नहीं देखा। उन्होंने क्या किया, अपने राजपाट आदि को छोड़ा और गंगा के किनारे जाकर बैठ गए, जहां इतने सारे साधु महर्षि थे। मैं जब अभी यहाँ आया तो मुझे लगा यहाँ एक नदी बहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे वृक्ष हैं, यहाँ आके लगता है कि ये कुछ आश्रम होगा पुरातन ऋषि मुनियों का, जहाँ आप सब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, कृष्ण के बारे में सुन रहे हो। जैसे पुराणों में वर्णन आता है, इस्कॉन के डिवोटीज कहते हैं कि ऋषि मुनियों में जहां जहां बड़े बड़े यज्ञ किए थे,
वही वही स्थान इस्कॉन को मिले हैं जहां आज क्या है इस्कॉन के मंदिर है, जो पुरातन काल में किसी ऋषि मुनियों ने वहां तपस्या आदि की थी। तो ये भी ऐसे कोई स्थान हो सकता है, ये कोई बाय चांस नहीं है, कृष्ण की योजना है। तो वैसे ही जब परीक्षित महाराज के ऊपर विपदा आए और परीक्षित महाराज ने गंगा की शरण ग्रहण की, गंगा के किनारे गए जहां ऋषि मुनि बैठे थे और ऋषि मुनियों को कहा कि मुझे अभी किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि उनको सांप क्या मिला था, तक्षक जो उड़ने वाला सर्प है, हम सांप का नाम सुनते ही डरते हैं और वो भी उसको पंख हो और उड़ते हुए आपके बालकनी के या खिड़की के वहां आके बैठ जाए घर के, तो आप कैसे डरोगे कि नहीं। हम भय तो हमें हमेशा है और सबसे अधिक भय हम किस चीज से है, मृत्यु से। क्यों हमें मृत्यु से भय है, क्योंकि हम इस संसार में सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं, तो अपने आप से करते हैं। मैं भी हम एक दूसरे को कहते हैं आई लव यू, हाँ ये तो एक झूठा वक्तव्य है, लेकिन वास्तव में सबसे अधिक मैं किससे प्रेम करता हूं तो किससे करता हूं, अपने आप से। इसलिए ये वाक्य बीरबल अकबर को सहन नहीं हो रहा था। अकबर ने यही प्रश्न पूछा कि हे बीरबल बताओ सबसे अधिक व्यक्ति किससे प्रेम करता है। बीरबल ने कहा सबसे अधिक व्यक्ति प्रेम तो अपने आप से करता है, कहते ये संभव नहीं है, हम तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं कल आपको साक्षात उदाहरण दिखाऊंगा। तो दूसरा दिन जब खुला, दूसरा दिन हुआ, सुबह हो गई, तो दरबार में ये बीरबल जी एक बंदर और बंदरिया और उसके छोटे बच्चे को लेके आ गए और बड़ा सा एक टैंक, सिंटेक्स का टैंक होता है वैसा टैंक लेके आ गए और पाइप से उसमें पानी छोड़ने लगे। अंदर इन दोनों को डाल दिया, किसको डाल दिया, बंदरिया को और उसके बच्चे को भी डाल दिया। जैसे डाला पानी डाला जा रहा था और पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था, तो जो बच्चा है छोटी हाइट का था वो डूबने वाला था, तो बंदरिया माँ है, उसने क्या किया, उसको अपने यहाँ लिया, छाती में लगाया, पानी का लेवल ऊपर आ रहा था तो उसको ऊपर रख दिया, पानी का लेवल और बढ़ रहा था। जब पानी वो डूबने लगी खुद, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को नीचे डाला, उसके ऊपर खड़ी होकर बाहर जंप मारी। बीरबल ने अकबर को कहा देखो हाँ वो किस चीज से हम सर्वाधिक प्रेम करते, इवन ये जो एनिमल है वो भी अपनी रक्षा के लिए, अपने शरीर के बचाव के लिए अपने उस छोटे से बच्चे के ऊपर खड़े होकर जंप मार रही है वो बंदरिया। तो उसी प्रकार से हम भी इस संसार में सबसे अधिक हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही इसी कारण से हम भयभीत हैं। और भय का कारण क्या है, इसलिए परीक्षित महाराज ने हिरण्यकश्यपु को पूछा। हिरण्यकश्यपु ने इतने प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार किए थे छोटे से बालक के ऊपर, कहा अरे तुम्हें तो कोई भय नहीं है, मैं तुम्हें इतना मार रहा हूं, सरकों के बीच डाल रहा हूं। कहते हैं मुझे इसलिए भय नहीं है क्योंकि मैं किससे प्रेम करता हूं, सर्वाधिक कृष्ण से। और यह हिरण्यकश्यपु खुद भयभीत है, क्यों, क्योंकि वो अपने शरीर से सर्वाधिक प्रीति रखता था, अपने आप से सर्वाधिक प्रेम करता था। इसी कारण से तो मृत्यु से बचने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कितने सारे जो वर है वो मांगे थे ब्रह्मा जी से। तो यहाँ परीक्षित महाराज जब उस गंगा के किनारे गए और उन्होंने उन साधु ऋषियों को कहा कि गायतः विष्णु गाथा, मुझे वो उड़ने वाले तक्षक सर्प से भय नहीं है, आप क्या करो, भगवान विष्णु का गुणगान करो, बस मुझे इस संसार में और किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। तो यही चीज वास्तव में परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में स्वीकारी। क्या स्वीकारा उन्होंने, बल्कि उनके पास समय बहुत कम था, 7 दिन का समय था। यदि हम में से किसी को 7 दिन दिए जाए, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, तो हमें कहा जाए आप क्या क्या करोगे 7 दिन में, लिख के ले आओ, तो हम अपने ही कार्यकलापों में इतने व्यस्त हो जाएंगे। 7वें दिन मुझे मरना है, उसके लिए हम कुछ सोचेंगे नहीं कि क्या करना चाहिए। इसलिए हम शास्त्रों में देखते हैं कि व्यक्ति को मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए, और जैसे हम अपने जीवन में कई सारे प्लान बनाते हैं, वैसे हमें किस चीज का प्लान बनाना चाहिए? किस चीज का? मृत्यु का। ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्रों में कि भक्तों ने मृत्यु का प्लान बनाया? दो महा उदाहरण है। एक है भीष्मदेव। कौन है? भागवतम के प्रथम स्कंध में भीष्मदेव का उदाहरण आता है। उनका वो डेथ प्लान, उनका क्या था? वो डेथ प्लान था, मुझे कैसे मरना है। शरशय्या पे लेटे हुए थे और उसी अवस्था में 56 दिन के लिए पांडवों को उन्होंने उपदेश दिया और सामने भगवान कृष्ण को बुलाया और उनको उनका सौंदर्य को देखते हुए उनकी उनकी प्रार्थनाओं का गान करते हुए भीष्मदेव ने क्या किया? अपना शरीर छोड़ा। और चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, जो हरिदास ठाकुर थे, अपने नाम सुना है हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो रोज 192 मालाओं का जप करते थे, 24 घंटे जप ही करते रहते थे। जब उनको वृद्धावस्था आई तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को भेजा कि हे गोविंद, जाओ हरिदास ठाकुर जो सिद्ध बकुल में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद ले जाओ जगन्नाथ जी का। तो जैसे गोविंद वहां प्रसाद लेकर गए तो ये हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, लेटे हुए होकर भी क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा जोर से और जोर से। आप सबकी आवाज बहुत धीमी है, कैसी होनी चाहिए? तेज बोलिए जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब गोविंद चैतन्य महाप्रभु के सेवक वहां पहुंचे तो हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, अपनी माला को लेकर ऐसे जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, गोविंद ने कहा कि ये प्रसाद आपके लिए है। उन्होंने कहा, मैं प्रसाद अभी ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने जप की जो संख्या है माला अभी पूरी नहीं की है, माला पूरी करूंगा तभी प्रसाद ग्रहण करूंगा। और उनको कितनी माला करनी पड़ती थी? 192 राउंड। और हम दो माला होती है तो भी हमें लगता है कि कितना बोझ हम उठा रहे हैं। 16 माला तो क्या लगता है कोई हमारे ऊपर पहाड़ हम गिर रहा है या पहाड़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ हरिदास ठाकुर कहते हैं, इसी को कहते हैं भगवान के नाम के प्रति आसक्ति। भगवान के नामों का उच्चारण करने में क्या है? दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो बीमार हूं। तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन उनको मिलने आए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर तुम्हें अब इतनी सिद्ध अवस्था में पहुंचे हो, 24 घंटे तुम्हारी जीवा क्या करती है? कृष्ण नाम का उच्चारण करती है। और उनकी जो जीव है वो रुकती नहीं थी, वो चाहे कोई भी कार्य भी क्यों ना कर रहे हो तो वो क्या करती थी? जीवा हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें मालाओं में जप करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो 24 घंटे कृष्ण नाम का स्मरण करते हो, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरी एक ही बीमारी है, मेरा मन। मेरी बीमारी क्या है कि मेरा ये जो नाम संख्या है वो पूरी नहीं हो रही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना और हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे चैतन्य देव, मैं अपने इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं, देह को क्या करना चाहता हूं? त्याग करना चाहता हूं। हम तो शरीर को अधिक से अधिक समय तक क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले भगवद गीता का ये प्रथम शिक्षा है। भगवद गीता शुरू होती है तो उसकी सबसे पहली शिक्षा भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यते। धीर व्यक्ति विचलित नहीं होता, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीर व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, आत्मा हूं, यह उसका मूल स्वरूप है। तो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने हरिदास ठाकुर ने अपना डेथ प्लान घोषित कर दिया, कौन सा प्लान? हमें भी अपना डेथ प्लान लिखना होगा भगवान के सामने कि भगवान ये मेरा डेथ प्लान है, आप सैंक्शन करो। ऑफिस में आप छुट्टियां सैंक्शन करवाते हो कि नहीं? आप प्लान होता है आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है, फैमिली टूर है। हाँ, तो उसी प्रकार से डेथ प्लान के बारे में सोचना होगा। उनका डेथ प्लान क्या था हरिदास ठाकुर का? चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि हे चैतन्य देव, मैं तो अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं, मुझे ये पता चला है कि आप इस संसार से अप्रकट होने वाले हो, और आपके अप्रकट होने से पहले मैं अपने आप में खुद देह को त्यागना चाहता हूं। लेकिन किस प्रकार से? एक विशेष योजना उन्होंने बनाई। क्या योजना थी? तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने हो और आपके चरण कमल में अपने छाती में धारण करूं। कहा? छाती में, हृदय में, और अपने आंखों से अपने आपके मुख कमल को देखूं और मेरी जिह्वा से ये दो शब्द निकले, श्री कृष्ण चैतन्य। कौन से शब्द? जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, ये हरिदास ठाकुर ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण यदि सैंक्शन करेंगे तो यह संभव हो सकता है। तो दूसरे दिन जो चैतन्य महाप्रभु है वो साक्षात कौन है? कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। दूसरे दिन जगन्नाथपुरी में अपने सारे भक्तों को लेकर हरिदास ठाकुर के कुटिया में आए और सारे भक्तों को हरिदास ठाकुर के इर्द गिर्द कीर्तन और नृत्य करने के लिए कहा। सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए कीर्तन में मग्न थे, नाच रहे थे। और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने बैठने के लिए कहा, उनके चरण कमलों को अपने हाथ में उठाया, अपने वक्ष स्थल में रखा और अपने आंखों से चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल को देखते हुए और अपने जीवा से क्या उच्चारण किया उन्होंने? श्री कृष्ण चैतन्य। और अपने शरीर को त्यागा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भगवान के सामने अपना ये जो डेथ प्लान है वो रखा था और उसमें वो सफल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के नामों का क्या किया था? आश्रय स्वीकार किया था। हाँ, इसलिए कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नहीं तेजे। जब हम भगवान के नामों का और भगवान के भक्तों का शेल्टर ग्रहण करते हैं और भगवत भक्ति का पालन करते हैं तो कृष्ण में हिम्मत नहीं है, भगवान उस व्यक्ति को नकारते नहीं है, भगवान उस व्यक्ति को स्वीकारते हैं, अपना समझते हैं। इसलिए कलयुग में भगवत भक्ति करनी है तो भगवान से दो चीजों की हमें से याचना करनी चाहिए। एक है भगवान के भक्तों का संग लाभ हो और दूसरा है भगवान के नामों का उच्चारण। ये दो ही चीजें वास्तव में ये जगत में मूल्यवान निधि है, मूल्यवान फल है, मूल्यवान रत्न है। चाहे हम जो मर्जी प्रार्थनाएं करें, भगवान से ये दो प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब ये दो चीजें हमारे पास हो तो साक्षात कृष्ण क्या है? हमारे निकट है। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इन दो चीजों के लिए हर एक व्यक्ति को कामना करनी चाहिए और इन दो चीजों की हमें आशा रखनी चाहिए। नहीं तो हम क्या करते भौतिक जगत में, हमेशा मृत्यु से बचने के लिए कई सारी योजनाएं बनाते हैं और वास्तव में हम मृत्यु से बचने के लिए जितनी मर्जी योजनाएं बनाएं, ऐसे नहीं कि व्यक्ति अभी योजनाएं बना रहा है, ये पुरातन काल से होते आ रहा है। कंस के जीवन से देखो, कंस भी मृत्यु से इतना भयभीत था। क्यों हम इतना भयभीत है मृत्यु से? क्योंकि मृत्यु हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है मृत्यु हमारे लिए। मृत्यु तो इस शरीर के लिए है, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु क्या है? गीता में कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि। हम कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुरातन हो जाता है, तो हम नए शरीर को धारण करते हैं। किसी को कहा जाए कि पुराने वस्त्र छोड़ो, नए कपड़े पहनो दिवाली में, वो रोएगा क्या? तो वैसे ही है, लेकिन हमारी दशा उल्टी है। ये पुराना शरीर छोड़ने का समय आता है तो हम क्या करते हैं? रोते हैं। एक बार हमारे एक महाराज जा रहे थे बिहार के किसी गांव में, एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी और बहुत बहुत रो रही थी और वो कह रही थी, भगवान मुझे उठा के ले जाओ, अभी कहां ये शरीर, ना चलना आ रहा है ना बैठना आ रहा है, इतनी बीमारियां है। वो बोलती जा रही थी, भगवान मुझे जल्दी उठा लो। जब जीवन में विपदा आती है तो हमें कुछ सोचता नहीं है, हम क्या सोचते, भगवान मुझे जल्दी उठा लो। तो वो महाराज ने कहा, हे मैया, इतना ही जल्दी है तो देखो वहां इलेक्ट्रिक का लाइट का वो तार जा रहा है, जाके उसको पकड़ लो। वो चिल्ला उठी, वो गालियां देने लगी, अभी तो वो जा रहे, क्या चाह रही थी, जल्दी जाना चाह रही थी। अभी जल्दी जाने का उपाय तो उसे बताया, लेकिन वो फिर भी मरना नहीं चाहती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब हम वृद्ध होते हैं तो बाल पकने लगते हैं, जब वृद्धावस्था आती है दांत गिरने लगते हैं, मतलब ये चीजें वृद्ध होने लगती हैं साथ साथ। लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जिसकी आशा हमारे जीवन से कभी जाती नहीं है, धनाशा जीवित आशा जिरिय तोपी न जिरियती। एक तो जीवित रहने की आशा और दूसरी है धन प्राप्ति की आशा। मरने के कगार में भी खड़ा है तो भी ये इच्छा दूर नहीं होती। ऐसे बड़े लालचित है चावड़ी बाजार के एक दुकान में, तो वहां बूढ़े हो गए थे पूरे, लेकिन जो कैश काउंटर है उस पे बैठे रहेंगे, हाथ नहीं हिल रहा है, मुंह में पान खाते रहेंगे, उधर ही थूकेंगे, लेकिन कहां से नहीं हटेंगे, कैश काउंटर पर। तो एक महात्मा जी हमारे जैसे पहुंच गए वहां, तो वहां पहुंचे तो उनके दो बेटे थे, उन्होंने कहा, महात्मा जी आप तो बड़े घूमते रहते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, भ्रमण करते हो, हमारे पिताजी को भी ले जाइए, अभी उनका समय आ गया है नजदीक, इनको भी थोड़े तीर्थ यात्रा करवाइए, पुण्य लाभ होगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा तो ये कार्य ही है, जीवों को कहां ले जाना, भगवान के नजदीक लगाना उसके मन बुद्धि को। तो उनको लिया, बच्चों ने उनका धन आदि दिया कि जाओ पिताश्री, आप जाइए जरा तीर्थ यात्रा करिए साधु महाशय के साथ। तो उनको ले गए, बहुत सारे तीर्थों में ले गए, नदियों में स्नान आदि किया, दान धर्म कर दिया, लेकिन फिर भी उनमें उस बूढ़े व्यक्ति में कोई परिवर्तन आया नहीं। वो साधु महाशय रोने लगे खुद कि अरे क्या मेरा जीवन है, एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया मैं। उन्होंने कहा, इनको वापस बच्चों के पास भेज देता हूं, बहुत हो गया अभी, हाँ ये व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो वो वापस चौड़ी बाजार के दुकान में उनको टपका देते बैठा देते, बच्चों को कहते आपके पिताश्री को ले लीजिए। बच्चों ने फिर से प्रार्थना की, नहीं 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 महाशय, आप उनको अपने साथ ले जाइए इस बार, और एक चांस। तो उन्होंने कहा, ठीक है ले जाता हूँ। तभी उन्होंने सोचा, अभी मैं दक्षिण भारत के तीर्थ कर दिए, अभी थोड़ा उत्तर भारत के तीर्थों में जाता हूँ, अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद। तो ऐसे वो घूमते घूमते काशी में गए, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और सोचा, चलता हूँ अभी गंगा मैया का स्नान में करता हूँ, इनको डुबा देता हूँ अच्छी तरह से, गंगा में स्नान कराता हूँ। तो जब गंगा में गए तो वहां काशी में या बनारस में गंगा के घाट पर से गुजर रहे थे, तो वहां बहुत सारे मृत देहों को जलाया जाता है। वो आग कब से है, वहां जो फायर जल रही है वो अनंत सालों से जल रही है, उसी फायर से जलाते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। तो जब यहां से गुजर ही रहे थे, ये सारा दृश्य देख रहा था साधु, उनके पीछे पीछे ये व्यक्ति भी चल रहे थे, तो साधु ने देखा रोने की आवाज आ रही है, और देखा कौन रो रहा है, जिस व्यक्ति को मैंने साथ लाया है वो मेरे पीछे रो रहा है। तो साधु ने कहा, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, एक व्यक्ति भगवान के लिए रो पड़ा। सफलता क्या है लाइफ में, कृष्ण के लिए रोना, किसके लिए रोना, हम तो बचपन से लेकर मृत्यु तक रोते रहते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हॉस्पिटल में माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और वो रोए नहीं, आवाज नहीं निकाले तो डॉक्टर कहते ये सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उसको डॉक्टर चुकौती निकाल देते हैं। रो, पहले आते आते रोना पड़ेगा आपको, थोड़ा बड़ा हो जाता है माता पिता रुलाते हुए स्कूल भेजते हैं, उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए रोता है, फिर शादी के बाद रोता है, फिर बुढ़ापा आता है रोता है, मृत्यु आती है तभी भी क्या करता है रोता है। हम जीवन भर रोते रहते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन हम किसके लिए नहीं रोते, भगवान के लिए नहीं रोते। और वास्तव में रोने योग्य व्यक्ति कोई है तो भगवान है, जिनकी प्राप्ति के लिए हमें रोना होगा। तो ये जो वृद्ध व्यक्ति था उन्होंने सोचा, वो रो रहा था तो साधु को लगा कि मेरा जीवन तो धन्य हो गया, एक व्यक्ति रो पड़ा भगवान के लिए, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो उन्होंने कहा महाशय बताइए आप क्यों रोए हो। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए रोया कि मैंने जीवन बिता दिया कपड़े का बिजनेस करते करते, कौन सा व्यापार, वस्त्रों का व्यापार, मुझे पता होता कि लकड़ियों के लिए भी इतना डिमांड है, क्योंकि मृत्यु देह जलाते हुए लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, उसको लगा इसको इतना डिमांड है लकड़ी का बिजनेस में करता। साधु ने वहां जंप मारी सीधा कहा गंगा में। तो मतलब हम इस संसार में बूढ़े हो जाए, मृत्यु नजदीक आ जाए, लेकिन धन प्राप्ति की आशा हृदय से निकलती नहीं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धा यावत ग्रहित्वा दंडम तथापि न दशना विहीनम जातम तुंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। तो शंकराचार्य ने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम था मोह मुद्गर स्तोत्र, जिससे मोह का विनाश हो। तो स्तोत्र में वो कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुन्नम, कि व्यक्ति का अंग गलने लगता है, बुढ़ापा आता है तो स्किन क्या होती है अपने स्वाभाविक स्थान को छोड़कर हिलने डुलने लगती है, लटकने लगती है। अंगम गलितम पलितम मुन्नम, और जो सर है यंग अवस्था में आपको कहा जाए आप ऐसे ऐसा छोटी रखो हमारे जैसे मुन्नम करो, हम कहेंगे नहीं नहीं पागल हो गए हो क्या, मुझे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी पत्नी क्या कहेगी। हाँ, लेकिन हर एक को अंतिम समय में क्या होना है, अपना हेड शेव, प्रकृति क्या करेगी, सबके बाल अपने आप हटाएगी। कहते हैं पलितम मुंडम दशनावीनम जातम तुंडम, एक समय आएगा जो पूरा क्रिकेट का टीम, दो क्रिकेट की टीम है ना अंदर, तो सारे दांत गिर जाते हैं, दशना विहीनम दांतों से रहित हो जाता है। वृद्धायावत ग्रहित्वा दंडम, वृद्धावस्था आती है तो व्यक्ति दंडा पकड़ने लगता है, उसका सहारा लेता है, लेकिन फिर भी वो कहते एक चीज नहीं जाती हृदय से, क्या है, तथापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी इस संसार में सुख प्राप्ति की आशा हृदय से उसको लगता है बस अभी ना ये दिवाली जाने दो, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो दिवाली में जाते कि अगली दिवाली में मेरा अच्छा समय आने वाला, मेरे बच्चों को बड़े होने दो, वो थोड़ा अभी जॉब लग जाए उनकी तो फिर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। मतलब व्यक्ति केवल आशा करते करते मरता है। प्रभुपाद ने एक छोटी सी उनकी एक किताब है, उसका नाम है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं ये व्यक्ति की दशा उस गधे के समान है जिस गधे के ऊपर धोबी ने बहुत बोझ डाला, और धोबी बहुत चतुर था, तो जब वो बोझ डाला तो क्या किया उस धोबी ने, गधे के आंख के सामने एक ऐसा लंबा स्टिक छड़ी टांग दी लकड़े, और उसके आगे एक गाजर और हरी घास लटका दी, और गधा जैसे जैसे आगे जा रहा है उसको लग रहा है बस अभी मैं पहुंचने वाला हूं, कहां पहुंचने वाला हूं, हरी हरी घास और सुंदर गाजर खाने को मिलेगा। लेकिन उस मूर्ख गधे को पता नहीं है कि ये आगे आगे चलता जाएगा मुझे कब मिलेगा नहीं है। वैसे ही हमारी स्थिति है, हम युवा बचपन जाता है, युवा अवस्था जाती है, बुढ़ापा आता है, फिर भी हम उस गधे के समान देखते रहते कि अभी मिलने वाला है, अभी सुख बस अभी मेरे नजदीक है। लेकिन वास्तव में सुख तो भगवान की क्या है, भगवत भक्ति में है। इस संसार में सारे लोगों ने ट्राई कर दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी ट्राई किया सारे जगत को जीत कर, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, मरने से पहले उन्होंने कहा कि जब मेरे शव को लेके जाओगे तो लेके जाने के लिए चार डॉक्टर्स होने चाहिए, चार कंधे लगाने वाले चार लोग होते हैं ना, हाँ उसमें क्या होने चाहिए, चार डॉक्टर्स वैद्य, और जब जिस रोड से ले जाओगे मुझे अंतिम दफनाने के लिए, जितना पूरा विश्व विजय करके मैंने धन प्राप्त किया है उसको फैला दो, उसके ऊपर से जाना चाहिए, और जब मुझे दफनाओगे हाँ जमीन में डालोगे तो मेरे हाथ क्या होने चाहिए, ऊपर रखो ऐसे दो हाथ। तो किसी एक व्यक्ति ने पूछा, अलेक्जेंडर द ग्रेट बताओ ये क्या है रहस्य। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं संसार का सारी सुविधा मेरे पास है, बेस्ट डॉक्टर्स मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो मुझे बचा नहीं सकते, वो खुद चार कंधे लेके जा रहे हैं मुझे। जितना धन है अब वो मिट्टी के समान है, जिनका कोई वैल्यू नहीं है मेरे मृत्यु के समय, और जब मैं मेरे हाथ बाहर रखोगे खुले तो उससे ये जगत को सिखाओ कि मैं जन्म लिया तो अपने साथ कुछ लेके आए थे, कपड़े लेके आए थे हम अपने साथ, हाँ कुछ भी नहीं लाए, और लेकिन अभी पूरा जीवन बटोरने में लगे रहते हैं। बटोरना है तो क्या बटोरो, कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण की सेवा अधिक से अधिक करने का प्रयास करो, वही लाइफ का वेल्थ है। हाँ तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी चर्चा है जिससे हम सीख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जीवन है और जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। और विशेष रूप से कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना कार्तिक एक्सप्रेस के समान है, जितना आप कार्तिक में थोड़ी सी सेवा करोगे कृष्ण की और आप बहुत तेजी से भगवान के चरणों में पहुंचोगे। एक नाम उच्चारण करोगे, एक माला जप करोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, कृष्ण कथा को सुनोगे, तीव्र गति से आप भगवान की ओर भागोगे। तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि भगवान भी अपने बारे में सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उस कथा को मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप लोग भूल गए होंगे, रंगनाथ फिर वो अल्टर से बाहर आए, एक पुजारी वहां खड़ा था और उसको कहा कि मुझे मंदिर से बाहर ले लो, जहां लेक्चर हो रहा है ना। तो उनको ले जाया गया, जब भगवान बाहर निकलते अपने गर्भगृह से तो बहुत सारे ड्रम्स बजते हैं, कर्ता स्मृदम। तो ऐसे जब वो गए तो जहां प्रवचन हो रहा था वो सारा पालकी वहां सामने आ रहा था, तो वो इस जब लेक्चर्स के बीच में बहुत सारे लोग भगवान के बारे में सुन रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, खड़ा होकर एक ऊंचे स्थान में जाकर खड़ा होकर बोला कि ये कैसे भगवान है, अपनी ही कथा में आके विघ्न डालते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो भगवान को ठेच लगे, भगवान ने कहा नहीं, मुझे अपने मेरे बारे में भक्त सुनते हैं उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। भगवान चुपके से निकल पड़े, वापस अपने स्थान में जाकर अपने मंदिर के अल्टर में जाकर बैठ गए। इस प्रकार से भगवान भी अपने अल्टर को छोड़कर अपने बारे में सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो हमें भी जब भी भगवान के बारे में श्रवण का मौका मिले हमें तीव्र गति से भागना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आप सुनोगे उतना ही अधिक भगवान से प्रीति करने लगोगे। जिसके बारे में सुनोगे उसको आप अपने हृदय में रखोगे, उससे आपको चाहे अनजाने में अफेक्शन उससे हो जाएगा। इस संसार में हम फिल्म स्टार्स के बारे में सुनते हैं, क्रिकेट स्टार्स के बारे में सुनते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में सुनते हैं, सबसे गंदा कैरेक्टर इन लोगों का चरित्र है, इतना गंद है उनके चरित्र में कि हम सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम सुनते रहते हैं। हाँ तो जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे गंभीरता से तो उनके प्रति अफेक्शन में वृद्धि होगी। तो मैं यहाँ ही विराम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद, आपने समय दिया और थोड़े समय के लिए श्रवण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।